धवला पुस्तक आठवी लेक्चर नंबर 16 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वर्चायाणं नमो लोए सौवसाहूणं साहुवज्जायिरिये अरहंते वंदिऊण सिद्धेवी जे पंच लोग वाले वोच्छं बंधस सामित्तम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसका जो तृतीय खंड है बंध स्वामित्व विचय, यह हम आठवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 117 पर आ गए। 117 तिरियंचों की बात चल रही थी और जो पांचवें गुणस्थान तक जो बंधने वाली प्रकृतियां हैं पहले से पांचवें तक, उस लिस्ट की हमने बात देखी, तो अभी उसके प्रत्यय कितने हैं उसकी बात चल रही है। यहां नया पैराग्राफ वहां से शुरू करते हैं, चौथी लाइन जो है ना, तिरियंचों में मिथ्या दृष्टियों के मूल प्रत्यय 4 होते हैं, उत्तर प्रत्यय 53 होते हैं, क्योंकि यहाँ वैक्रिक और वैक्रिक मिश्र प्रत्ययों का अभाव है। हमने सामान्य से गुणस्थानों की बात की थी तो 57 में से 2 गए थे आहारद्विक और बाकी 55 होते थे, अभी इसके और 2 नहीं है इसलिए 53 है। विशेष इतना है कि देवगति चतुष्क के 51 प्रत्यय होते हैं, क्योंकि वैक्रिक वैक्रिक मिश्र औदारिक मिश्र और कार्मण प्रत्ययों का अभाव है। इन्हें औदारिक मिश्र और कार्मण योग के काल में देवगति का बंध तिरियंचों को नहीं होगा। नहीं, देखो तिरियंचों में वैक्रिक वैक्रिक मिश्र होता ही नहीं, नारकी की बात नहीं, अभी तिरियंच की बात है। तिरियंचों में ये योग होते ही नहीं है, पहले गुणस्थान में तो उसी को निकाल दिया। अब कहते हाँ औदारिक भी होता है, औदारिक मिश्र भी होता है, पर तिरियंचों को औदारिक मिश्र अवस्था में देवगति कब बंधेगी ये बोलो, बन सकती है कि नहीं बन सकती पहले नक्की करना। अपर्याप्त अवस्था में देवगति कब बंधेगी, चौथे गुणस्थान वाले को बंधेगी। यहाँ बात किसकी चल रही है, पहले वाले की। फिर से यानी कोई भी जीव हो, मनुष्य हो या तिरियंच हो, मिथ्या दृष्टि है तो अपर्याप्त अवस्था में देवगति नहीं बांधता, पर्याप्त होने पर देवगति नरगति सब बंधेगा। अपर्याप्त अवस्था में ना नरगति बनती है ना देवगति। अपनी चर्चा जो पूछे हुए प्रकृतियों में से चलनी बात, तो यहाँ देवगति का बंध मिथ्या दृष्टि को अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा, ना ही सासाधन वाले को होगा, इसलिए औदारिक मिश्र और कार्मण भी यहाँ नहीं लेना। अब देखो जो क्षायिक समय दृष्टि है ना, वो भोग भूमि में उत्पन्न होने वाला तिरियंच, वो औदारिक मिश्र अवस्था में देवगति बांधेगा, कार्मण में भी बांधेगा, पर यहाँ मिथ्या दृष्टि लिया है, मिथ्यात्व अवस्था में अपर्याप्त अवस्था में देवगति का बंधन नहीं होता। यहाँ तक ख्याल में आई बात, त्रेपन प्रत्यय वहां तो किसके लिए बताया, उत्तर प्रत्यय 53 होते हैं, किसके लिए, बाकी सभी प्रकृतियां बांधने के लिए, ज्ञानावरणादि सबके लिए। अब कहते हैं देवगति चतुष्क के लिए कितने प्रत्यय होते हैं, तो 51 होते हैं, क्योंकि देवगति बाद में तो बंधेगी, पर्याप्त होने पर देवगति वगैरह सब बंधेगी, परंतु अभी नहीं बांध रहे। देखो देवगति चतुष्क में वैकृत शरीर और अंगोपांग लेना, और ऊपर जो प्रत्यय में वैकृत शब्द लिया है वो वैकृत कायोग और वैकृत मिश्र कायोग लेना। नहीं तो कहेंगे यहाँ तो हा कहते वहाँ ना कहते, वो कैसे? वहाँ प्रत्ययों में योग लेना और यहाँ बंधने वाली प्रकृतियों में वो शरीर अंगोपांग लेना। चतुष्क में वो शरीर अंगो वैकृत शरीर फिर से प्रत्यय प्रत्यय योग यानी वैकृत वैकृत मिश्र प्रत्ययों का अभाव है। पेज नंबर है 117। फिर से पढ़ते देखो, तीर्यंचों में मिथ्या दृष्टियों के, अभी तीर्यंचों में गुणस्थान कौन से? 1 से 5। प्रत्येक गुणस्थान के प्रत्यय बताने जा रहे हैं। मूल प्रत्यय 4, ये तो समझ में आता है। उत्तर प्रत्यय 53 होते हैं, क्योंकि देखो तीर्यंचों में वैकृत का योग नहीं है, वैकृत मिश्र का योग नहीं है। आहार कहा, आहार मिश्र तो हमने पहले से निकाल दिया था, मिथ्या तो गुणस्थान के लिए। हमेशा जो हम वहाँ 55 गिनते थे उसके बदले यहाँ ये दो, हाँ 53। यहाँ जो वैकृत वैकृत मिश्र बताया है ये कायोग की बात है। अब ये बात बताए, विशेष इतना है कि देवगति चतुष्क के देवगति देवगत्यानुपूर्वी वैकृत शरीर और वैकृत अंगोपांग इसका बंध करने वाले के, और गुणस्थान कौन सा है? मिथ्या दृष्टि है, तो अपर्याप्त अवस्था में इसका बंध नहीं होता है। तो अन्य प्रकृतियों के लिए तो हमने केवल दो ही योगों को माइनस कर दिया था। अब यहाँ और क्या माइनस करना? औदारिक मिश्र और कारमाण प्रत्ययों का भी अभाव है। अन्य जो प्रकृतियों की बात की थी हम, ज्ञानावरण आदि, वो तो अपर्याप्त अवस्था में भी बनती है, और वहाँ औदारिक मिश्र का योग कारमाण का योग भी वो प्रत्यय में गिनेंगे हम, परंतु देवगति का बंध यानी उसके साथ बनने वाली वो सभी लेना, वैकृत शरीर अंगोपांग अपर्याप्त अवस्था में मिथ्या दृष्टि को नहीं होता, वो सम्यक दृष्टियों को होता है, वो बाद में गिनेंगे उसको। समझ में आई यहाँ तक बात?
हाँ। यहाँ पर तीसरे हाँ। लाइन में जो क्योंकि लिखा है ना, एक कारण प्रत्यय होते हैं, क्योंकि वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र, ये क्या लेना? ऊपर
ये योग 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 हाँ, कायोग योग, हाँ वैकृत कायोग, क्योंकि ये प्रत्ययों की बात है ना, हाँ अपर्याप्त अवस्था में देवगति चतुष्क का बंध मिथ्या दृष्टि जीव अपर्याप्त अवस्था में नहीं कर सकते, ना देवगति का ना नरगति का। यहाँ देवगति की बात पूछी गई थी सूत्र में, और अंगोपांग देवगति देवगत्यानुपूर्वी वैकृत शरीर और वैकृत अंगोपांग, ये प्रकृतियों के नाम है और वो प्रत्ययों के ने उसके योगों की बात है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, चौथी लाइन, एक समय संबंधी क्या? हाँ होता ही नहीं, कोई नहीं, मनुष्य भी नहीं कर सकता मिथ्या दृष्टि। देवगति बांधने वाले कौन जीव है? मनुष्य है, तीर्यंच। तो कौन से गुणस्थान वाले देवगति को बांधते हैं? मैं अपर्याप्त नहीं कहा मैंने, देवगति का बंध कौन कौन से गुणस्थान वाले करते हैं? अरे पहला दूसरा तीसरा चौथा सब अपर्याप्त की बात बाद में पूछूंगी मैं। मैंने ये पूछा कौन से गुणस्थान वाले जीव देवगति का बंध करते हैं? 1 से 5 सब करते हैं। अभी हमने देखा ना सूत्र में इन प्रकृतियों का बंध कौन करते हैं, तो मिथ्या दृष्टि से लेकर 5वें तक। अब अपर्याप्त अवस्था में देवगति का बंध कौन कर सकते हैं? उसमें से तीसरे में तो अपर्याप्त अवस्था ही नहीं है, 5वें में भी अपर्याप्त अवस्था नहीं है। अपर्याप्त अवस्था होती है पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान। तो इसमें से पहले दो गुणस्थान वाले अपर्याप्त अवस्था में देवगति का बंध नहीं कर सकते, चौथे वाला करेगा, उसको बाद में हम प्रत्ययों में गिनेंगे वहां पर। समझ में आई बात? इसलिए यहाँ औदारिक मिश्र और कारमाण का योग, जो अन्य प्रकृतियों के बंध में उसको कारण कहा, हाँ देवगति चतुष्क के लिए नहीं। अब आगे, एक समय संबंधी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय क्रम से 10 और 18 होते, ये तो हर जगह हमने देखे थे। सासादन समय दृष्टि के मूल प्रत्यय 3 यहाँ मिथ्या तो नहीं है, इसलिए असंयम, कषाय और योग। और उत्तर प्रत्यय 48 होते हैं, वहां हम 50 गिनते थे, उसमें वैक्रिय कायोग और वैक्रिक मिश्र कायोग बिना। वैक्रिय चतुष्क के मूल प्रत्यय 46 होते हैं, क्योंकि पूर्वोक्त प्रत्ययों का ही अभाव रहता है। देखो अभी सासादन में 48 बताए, उत्तर प्रत्यय 48, वैक्रिक और वैक्रिक मिश्र बिना 48 किए थे, वो सासादन वाले को अपर्याप्त अवस्था में देवगति का बंध नहीं होगा। यानी कोई सासादन के साथ मरकर तिर्यंच में उत्पन्न तो हो सकता है, पर वो जीव अपर्याप्त अवस्था में देवगति को नहीं बांधेगा, इसलिए वहां पर भी औदारिक मिश्र और कारमाण को नहीं लिया। तो बाकी प्रकृतियां 48 से बनती है, परंतु वैक्रिक चतुष्क, देखो वहां देवगति चतुष्क कहा, यहाँ वैक्रिक चतुष्क कहा, बात एक ही है। जिसको देवगति चतुष्क कहा उसी को यहाँ वैक्रिक चतुष्क कहा, क्योंकि पूर्वोक्त प्रत्ययों का ही अभाव रहता है। ये समझ में आई बात यहां तक? एक समय संबंधी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय क्रम से 10 और 17 होते हैं, ये जो गुणस्थानों में सामान्य से देखे वैसे यहां पर भी होते हैं। सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि के मूल ओघ प्रत्यय ही होते हैं। तीसरे गुणस्थान में मूल ओघ प्रत्यय कितने हमने 43 देखे थे, हाँ। और यहाँ पर मूल, हाँ नहीं, 43 कैसे है, वैक्रिय को नहीं होगा, वो उनको कम करना चाहिए, वैक्रिय को एकरिक मिश्र को कम करके। समय मिथ्या दृष्टि को तो मिश्र की बात ही नहीं गिनी थी हमने। हाँ देखो, ये एक वाक्य रिपीट हुआ है यहाँ पर, फिर पढ़ती हूँ। समय मिथ्या दृष्टि और असंय समय दृष्टि के मूलोक प्रत्यय ही होते हैं। विशेष है कि सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंय समय दृष्टि मूलोक प्रत्यय ही होते, ये विशेष से लेकर यहाँ तक निकाल लो, एक वाक्य निकालो, उसका आगे का वाक्य पढ़ती हूँ। विशेषता यह है कि सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थानों में वैक्रिक का योग, यानी 43-1 करना, और असंय समय दृष्टि में वैक्रिक और वैक्रिक मिश्र योगों को कम करना चाहिए, यानी हमने 46 में से 2 माइनस करना पड़ेगा। ये समझ में आई बात? हमने तो वैक्रिक मिश्र को गिना ही नहीं था, तीसरे गुणस्थान वाले जब हमने गिने थे 43, उसमें वैक्रिक मिश्र कोई भी मिश्र वाला गिनते नहीं है, परंतु तीसरा गुणस्थान चारों गति में है तो वैक्रिक का योग को हमने गिना था, उसको यहाँ माइनस करना, तो 43-1 होगा, यानी 42 हो गए। यानी तीसरे गुणस्थान के लिए 42 प्रत्यय हो गए, और चौथे गुणस्थान के लिए हम अवैक्रिक और वैक्रिक मिश्र भी गिनते हैं, उसमें से दोनों को कम कर दो तो वहां 44 हो गए। संयता संयत गुणस्थान में ओघ प्रत्यय ही होते, क्योंकि संयता संयत हम तिर्यंच और मनुष्यों में गिनते हैं, तो वहां जो हमने गिने थे वो हो जाएंगे वहां पर। इस प्रकार संयता संयत में कितने गिने थे याद है क्या? 37 कुछ गिने थे ना, 37, हाँ 37, हाँ। उसमें तो 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदारिक का योग ही होता है, योग में तो उतने होते हैं। फिर कषाय में से भी वो अनंतानुमंदी और प्रत्याख्यान वित्त वो सब वो तो निकल जाते हैं, और संयम में त्रस वाला निकाल देना है तो हाँ वो 11 हो जाते हैं, इससे वो 37 होते हैं। इस समझ में है ना संहितिका 37। देखो मिथ्यात्व ही नहीं है, असंयम के 11 कषाय में से 8 कषाय और 9 कषाय, 9, 8, 17 और ये 11 28 हो गए, और 9 योग 37 होते हैं। इस प्रकार चार प्रकार के तिर्यंचों के प्रत्ययों की प्ररूपणा की है। चार प्रकार के तिर्यंच याद है ब्रह्मा? हाँ, तिर्यंच सामान्य, पंचेंद्रिय तिर्यंच, हाँ तिर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी। हाँ, विशेषता यह है कि पंचेंद्रिय तिर्यंच योनियों में, योनिनियों में चाहिए, पंचतीर्थ जोनी नीसु है ना, योनि नियों में, और एक नहीं डालना रस्व, पंचेंद्र तीर्यंच योनि नियों में, ये कायोग शब्द निकाल देना यहां से, वो एक्स्ट्रा एडिशनल पड़ा है, कायोग शब्द ही निकाल दो। देखते पुरुष वेद और नपुसक वेद प्रत्यय कम करना चाहिए, क्योंकि पंचेंद्रिय तीर्यंच योनि ने कह दिया तो स्त्री वेद वाले है, ये तो पहले डिक्लेयर कर दिया, तो वो दो वेद उनके कारणभूत हो गए नहीं, उसका उदय उनके नहीं है, ये उसका अर्थ है, बंद करेंगे उदय की बात है इनको। और दूसरी क्या विशेषता है, असंयत गुणस्थान में औदारिक मिश्र और कारमण प्रत्ययों को कम करना चाहिए, क्योंकि इनके असंयत के साथ उनकी अपर्याप्त अवस्था ही नहीं होगी, क्योंकि कोई समय दृष्टि जीव तिर्यंच योनियों में उत्पन्न नहीं होगा, उनके चौथा पांचवा गुणस्थान प्राप्त होगा अपन वो पर्याप्त होने के बाद, इसलिए औदारिक मिश्र और कारमण वहां पर नहीं होगे असंयत वालों को, ये योनिनियों में विशेषता बताई। हाँ नहीं, उसमें से वेद भी कम कर दिए थे ना हमने, सामान्य से असंय समय दृष्टि को हमने 44 देखे थे, उसमें से 2 वेद और ये 2 कम कर देना, 40 ही हो जाएंगे औदारिक मिश्र के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं असंयत की बात करते थे, असंयत में 44 थे ना अभी ऊपर देखे थे तीरेंचों के लिए, उसमें से माइनस क्या करना, 2 वेद और ये 2 योग, तो 40 हो जाएंगे। और संहिता संयत के लिए पुरुष वेद नपुसक वेद 2 वेद कम कर देना, योनियों में यानी पांचवे में, यानी सब जगह 2-2 कम कर देना, हाँ हर जगह 2-2 कम कर देना, देखो मिथ्यात्व से लेकर सब जगह कम कर देना है, हर गुणस्थान के योगों में 2 वेद नहीं गिनना है। अब आगे बढ़ते हैं, 118 पृष्ठ पर आते हैं। अब कौन से गति संयुक्त बांधते हैं उसकी बात करेंगे, 5 ज्ञानावर्णीय, 6 दर्शनावर्णीय, 8 कषाय, अरति शोक भय जुगुप्सा, पंचेंद्रिय जाति, तेजस्व कारमान शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श, अग्र लघु उपघात परघात उच्छ्वास कौमा, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर निर्माण और 5 अंतराय, इन प्रकृतियों के मिथ्या दृष्टि चारों गतियों से संयुक्त, यानी चारों गतियों के साथ ये प्रकृतियां बनती है, सासाधन समय दृष्टि नरक गति के बिना 3 गतियों से संयुक्त, क्योंकि सासाधन वाला नरक गति को बांधता ही नहीं है, और शेष जीव देवगति से संयुक्त बंधक है, शेष में 3, 4, 5 गुणस्थान वाले, ये ख्याल में आई बात। अब साता वेदनीय हास्य रति को मिथ्या दृष्टि एवं सासादन सम्य दृष्टि नरक गति के बिना तीन गतियों से संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि साता और हास्य रति नरक गति का बंध है, तब वो नहीं बनते हैं, वो असाता वेदनीय और अरति शोक को बांधते हैं उस समय। तथा शेष जीव देव गति से संयुक्त बांधते हैं। इसी प्रकार यश कीर्ति को भी बांधते हैं, क्योंकि इससे इसके कोई विशेषता नहीं है। यानी यश कीर्ति के साथ भी ऐसी बात है कि मिथ्या दृष्टि जीव है, यानी वो अलग क्यों लिया उसको? ये उदय की अपेक्षा बतानी होगी, इसलिए उसका ग्रुप अलग बनाया, क्योंकि इससे कोई विशेषता नहीं है। यानी जो गतियां जो बांधता है वो यश कीर्ति के साथ बांध सकता है। असाता वेदनीय और अयश कीर्ति को मिथ्या दृष्टि चारों गतियों से संयुक्त, यानी साता और हास्य रति के समान यश कीर्ति को भी ले लेना है, क्योंकि वो यश कीर्ति भी देव नरक गति के साथ नहीं बनती। इसलिए पहले गुणस्थान वाला अन्य प्रकृतियां चारों गतियों के साथ बांधता है, परंतु पहले गुणस्थान वाला साता वेदनीय हास्यरति और यश कीर्ति को नरक गति के साथ नहीं बांधेगा, तीन गति के साथ बांध सकता है। अब उल्टा पूछ रहे, असाता वेदनीय और अयश कीर्ति को मिथ्या दृष्टि चारों गतियों से संयुक्त, यानी देवगति के साथ ये बन सकती है, नरक गति के साथ उस समय साता वेदनीय और यश कीर्ति नहीं बनती, परंतु देवों को अयश कीर्ति और असाता वेदनीय बन सकती है। सासादन तीन गतियों से संयुक्त और शेष जीव देव गति से संयुक्त बांधते हैं, यानी देव गति के साथ इसका ऑप्शन है। पुरुष वेद को मिथ्या दृष्टि और सासादन समय दृष्टि अब नरक गति के साथ तो नपुसक वेद ही बंधेगा। किसको? देखो देखो, साता और हास्य रति नरक गति के साथ नहीं बंधेगी, यश कीर्ति भी नरक के साथ नहीं बंधेगी, है ना? कौन से? हाँ ना, परंतु देखो देखो, ज्ञानावरणादि प्रकृतियां नरक गति के साथ भी बनती है कि नहीं बनती है? वैसे साता हास्य रति और यश कीर्ति नरक गति के साथ नहीं बन सकती, ये कहना चाहते। परंतु असाता और अयश यानी वो देव गति के साथ नहीं बनते, ऐसा नहीं कहा? हाँ, वो तो चारों गतियों के साथ बनती। अब पुरुष वेद को मिथ्या दृष्टि और सासादन समय दृष्टि, देखो मिथ्या दृष्टि और सासादन समय दृष्टि चारों गति को बांधते हैं, परंतु जब नरक गति बांध रहे वहां तो जो वेद है वही उसी को बांधेंगे, तो वहां तो नपुसक वेद बांधेंगे नरक गति के साथ। तो पुरुष वेद कौन कौन से पर्याय में पाए जाते हैं? तो देव में, तिर्यंच और मनुष्यों में, तो तीनों गति के साथ पुरुष वेद बन सकते। ये तो क्योंकि पहले दो गुणस्थान वाले तीनों गति के साथ वो बांधेंगे, नरक गति के बिना तीन गतियों से संयुक्त, और शेष जीव, शेष यानी तीसरे चौथे पांचवें, वो तो देव गति को ही बांधते केवल, तो पुरुष वेद ही बांध रहे वो और देव गति ही बांध रहे। समचतुर्थ संस्थान प्रशस्त विहाय गति सुभग सुस्वर और आदेय प्रकृतियों का गति संयोग भी इसी प्रकार कहना चाहिए। हाँ, नरक के बिना, पहले दो गुणस्थान वाले नरक के बिना बांधेंगे, और बाकी तो देवगति ही बांधते हैं, और देवगति के साथ इन्हीं का, इसके ऑप्शनल दूसरी प्रकृतियां नहीं बनती उनके। देवगति और देवगति प्रायज्ञान पूर्वी को सब देवगति के संयुक्त ही बांधते हैं, वो तो आसान है। अब वैक्रिक शरीर और वैक्रिक अंगोपांग को अभी केवल वो प्रकृति अगर एज इट इज हम कंसिडर करेंगे तो मिथ्या दृष्टि देवगति के साथ भी बन सकते हैं और नरगति के साथ भी बांधते हैं, तथा शेष देवगति से संयुक्त बांधते हैं, सांसाधन से लेकर सारे, क्योंकि वैकृत शरीर कब बांधेगा? देवगति के साथ, क्योंकि सांसाधन वाला नरगति नहीं बांध सकता। स्थिर और शुभ प्रकृतियों का गति संयोग सातावेदनी के समान है, क्योंकि स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ ये ऑप्शन तो सभी के लिए, तो मिथ्या दृष्टि चारों गतियों के साथ, सॉरी स्थिर और शुभ तो नरक गति के साथ नहीं बंधेगी। नारकी जीव जाके वहां पर उदय तो दोनों का होता है और बंधेगा, दोनों बंधेगा, परंतु जिस समय नरक गति बांध रहे तब अस्थिर और अशुभ वो बांधेगी। तो सातावेदनी के समान है मिथ्या दृष्टि सासाधन वाला तीन गति के साथ। देव गति और नर गति से संयुक्त, देव देव बांधने वाले देव नहीं है, किस गति के साथ बंध रहे हैं। देव के वहां देव गति लिखो तो आप कंफ्यूजन नहीं होगा, देव गति व नर गति के सहित बांध रहा है। तो स्थिर और शुभ नरक बिना है ना, नरक गति बिना। अस्थिर और अशुभ प्रकृतियों का गति संयोग असाता वेदनी के समान है, परंतु देवगति के साथ अस्थिर अशुभ बन सकती है, यानी अस्थिर और अशुभ मिथ्या दृष्टि चारों गतियों के साथ बांधेगा, सासाधन वाला तीन गतियों के साथ, ऊपर वाले देवगति के साथ। उच्च गोत्र को मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टि देव व मनुष्य गति से संयुक्त, क्योंकि उच्च गोत्र का यानी जब तिर्यंच गति और नर गति बनती है तो उसके साथ नीच गोत्र ही बनता है, ही लगाना। तो उच्च गोत्र को मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टि देव व मनुष्य गति से संयुक्त, समय सासाधन समय दृष्टि देव नहीं लेना, देव गति व मनुष्य गति, तथा शेष तिर्यंच देव गति से संयुक्त बांधते हैं, शेष यानी तीसरे चौथे पांचवे गुण स्थान वाले। ये समझ में आई बात? यानी कौन से प्रकृति कौन से गति के साथ कौन से प्रकृतियां बन सकती है नहीं बन सकती, वो कौन से गुण स्थान में बांधते हैं, ये थोड़ा अभ्यास हो जाएगा तो ये ख्याल में आ जाती बात। सब प्रकृतियों के बंध के तिर्यंच ही स्वामी है, क्योंकि हमारी तिर्यंच की प्ररूपना चल रही है। 119 पृष्ठ पर अभी बात शुरू हुई, बंध अध्वान और बंध विनष्ट स्थान सुगम है, क्योंकि अध्वान हमने पहले से पांचवे तक होता है सूत्र में बताया था, और पांचवे के अंत समय तक यानी तिर्यंचों में तो पांच ही गुण स्थान होते हैं, तो वहां तो उसका विनष्ट स्थान है। अभी सादी अनादि की बात करेंगे। पांच ज्ञानावर्णीय, छह दर्शनावर्णीय, कौमा आठ कषाय, यहाँ भी कौमा, भय जुगुप्सा, तेजस्व कारमान शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श, अगुर लघु उपघात निर्माण और पांच अंतराय, इनका मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में चारों प्रकार का बंध होता है। चारों कौन से? सादि अनादि ध्रुव और अध्रुव। नहीं नहीं, भव्यों को भी अनादि का होता है ना, अभव्यों में ध्रुव। देखो क्या कहते हैं, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में चारों प्रकार का बंध होता है, शेष गुणस्थानों में तीन प्रकार का बंध होता है, क्योंकि उनमें ध्रुव बंध का अभाव है। ये ध्रुवत्ता भाव धुआ भावा दो लिखा था ना, शेष प्रकृतियों का सादि व अध्रुव बंध होता है, क्योंकि वो प्रतिपक्ष वाली है या निरंतर वाली वो होती है कुछ कुछ, तो धुवत्ता भावा भी आया, ये धुआ भावा लिखा है, धुआ अभाव। अब एक ग्रुप हो गया, अभी दूसरी कुछ प्रकृतियां बताए कि जो बंद विच्छित्ति होली मान ली कुछ है, जो दूसरे गुण स्थान में बंद विच्छित्ति होती है उसको ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि क्रम कैसे लेते, वो ज्ञानावरण को तो पांच को एक साथ लिया और वहाँ छह दर्शनावरण लिए थे, तो यहाँ बाकी तीन ले लिए। पढ़ेंगे, निद्दा निद्दा पहला पहला थीन गिद्धि अनंतानुबंधी कोधमान माया लोग इथिवेद तिरिखाओ मनुषाओ तिरिख गई। देखो यहाँ पर मनुष्य ये मार्गणाओं में, जैसे गुणस्थानों में दूसरे गुणस्थान में केवल हमने तिर्यंच आयु को गिना था, परंतु तिर्यंच और मनुष्यों के लिए दूसरे गुणस्थान वाली जो 25 है उसमें मनुष्य आयु को भी गिनेंगे, मनुष्य गति को भी, और फिर वो सब, क्योंकि गुणस्थानों में वो हमने जो चौथे गुणस्थान में जो गिनी थी ना, चौथे गुणस्थान की बंधु उच्चिति कितनी दिखी थी हमने, 10 की, उसमें से अप्रत्याख्यान 4 थे और बाकी सब मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य आयु, औदारिक औदारिक अंगोपान और वज्रषक सहन, वो सब यहाँ गिनेंगे अभी। अब देखो, तीर्य आयु मनुष्य आयु, तीर्य गति मनुष्य गति, औदारिक शरीर, चार संस्थान, ये हमेशा की 25 तो है ही, उसके इन एडिशन ये 6 गिनेंगे हम, वो नगरोत परिमंडल स्वाति कुब्जक और वामन। पहले संस्थान जो सॉरी हुंडक संस्थान जो छठा है उसके पहले गुणस्थान में बंद विच्छित हुई, यहाँ बीच वाले 4 औदारिक शरीर अंगोपांग, अभी सहनन 5 कहते हैं, क्योंकि औदारिक शरीर यहाँ तक ही बनता है तो वज्रषभ सहनन भी यहीं तक बनेगा। संस्थान में 4 लिए, सहनन में 5 लिए, मनुष्यों में भी ऐसी आगे चलकर ये प्ररूपना होगी। पांचवे सहनन कौन सा लिया है, वज्रषभ सहनन को भी यहाँ पर ही लिया, हाँ वज्रषभ नाराज को। तिर्य गति प्राज्ञानुपूर्वी, मनुष्य गति प्राज्ञानुपूर्वी, उद्योत अप्रशस्त विहाय गति, दुर्भग दुस्वर अनादेय व नीच गोत्र, इनका कौन बंधक और कौन अबंधक है, कौन शब्द रह गया, कौन बंधक और कौन अबंधक है। देखो यहाँ 31 प्रकृतियां हुई और बाकी भी, हाँ छोड़ना नहीं, सबको लेना, असंप्राप्त सुपाटिका को छोड़कर, क्योंकि वो पहले में गई है, पहले गुणस्थान के बंधे विच्छित्ति में उसको गिनेंगे। ख्याल में हमें हमेशा कितने 25 गिनते थे ना, उसमें से ये 6 कौन से, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी मनुष्यायु औदारिक औदारिक अंगोपांग और वज्रषभ नाराज सहन, बाकी तो हमने गिनी हुई याद की हुई प्रकृति है 25, उसके साथ ये भी जोड़ दी, क्योंकि देखो मनुष्य गति और तिर्यंच गति यहीं तक बनती है, बाद में तो देवगति बनती है, तो इनके औदारिक शरीर अंगोपांग वगैरह जो प्रक्रिया यहीं तक बंधेगी। हाँ वो जो तीसरे चौथे वाले गुणस्थान वाले हैं वो इनको नहीं बांधते, तो इसलिए यहाँ बंध विच्छित्ति कहते हैं, यही कारण है, हर बंध विच्छित्ति में यही कारण है, वो वहां से कौन से गुणस्थान में जाता है वो नहीं देखना है, दूसरे वाला पहले में आने वाला है, ऊपर जाने वाला नहीं है, फिर भी दूसरे में उसकी बंध विच्छित्ति कहेंगे, क्योंकि तीसरे गुणस्थान वाले उसको नहीं बांध सकते। हाँ देवनारकियों में वो जो प्रकृति है वो चौथे, पर जब हम गुणस्थानों की बात करते हैं तो जो कोई बांधेगा उसको वहां गिनते हैं, पर मार्गणाओं में विशेष बातें होती है ना, जैसे हमने नारकियों में देखा था पहले गुणस्थान में 16 जो बंधु विच्छुत्ति वाली थी उसमें से वो 4 ही बांधता है, मिथ्या तो हुंडक संस्थान नपुसक वेद और असंप्राप्त सुपाटिका सहन, उसी की बंधु विच्छुत्ति कहेंगे उनके लिए, बाकी वो बांधते ही नहीं है प्रकृतियां, तो जितने बनते हैं प्रकृतियां उसमें से बंधु विच्छुत्ति कहेंगे। ख्याल में आई बात, यानी वो मैक्सिमम सारी जो प्रकृतियां मिथ्या दृष्टि को भी बांधने वाली 117 हम गिनते हैं, आहार द्विक और तीर्थंकर भी ना, वो तो मनुष्यों की अपेक्षा है, बाकी देव और नार के अपने अपने यथायोग्य कम प्रकृतियां बांधते हैं। अब यह सूत्र सुगम है, उसका उत्तर दे रहे। मिच्छा इट्ठी शासन सम्मा इट्ठी बंधा एदे बंधा अवशेषा अबंधा, क्योंकि दूसरे गुणस्थान की बंधे उच्चित्ति का अर्थ है पहले दो गुणस्थान वाले बांधते हैं, इसके द्वारा सूचित अर्थों की प्ररूपणा करते हैं। स्त्यान वृद्धि आदि तीन। अभी पहला प्रश्न क्या होता है, बंधे उच्चित्ति पहले होती है क्या उदय उच्चित्ति पहले होती है? अब ये जो प्रकृतियां बताने वाले हैं इनकी उदय उच्चित्ति होती ही नहीं है, क्योंकि पांच गुणस्थान तक इनका तो उदय चलेगा, केवल बंध कहाँ रुकता है उसकी बात, यानी वो कंपैरिजन नहीं कर सकते। फिर से पढ़ते देखो, स्त्यान वृद्धि आदि तीन, स्त्री वेद, तिर्यक आयु, तिर्यक गति, ये कॉमे लगाना जहाँ जहाँ नहीं हुआ पर। औदारिक शरीर चार संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग पांच सहनन, तिर्य गति प्राज्ञान पूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहाय गति, यहाँ कौमा, दुस्वर और नीच गोत्र, इनका तिर्यक गति में उदय विच्छेद नहीं है, क्योंकि वो पांचवें गुणस्थान तक तो इसका उदय चलता ही रहता है। सासादन गुणस्थान में केवल बंधे विच्छेद ही है, क्योंकि अभी सासादन वाली सब प्रकृति हम देख रहे हैं यहाँ पर। विशेष इतना है कि तिर्यक गति प्राज्ञानुपूर्वी का, हाँ उसके साथ केवल हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो चौथे गुणस्थान की बंध विच्छित्ति वाली है। पूर्व में बंध विच्छिन्न होता है, पूर्व में यानी कहाँ, दूसरे में, और पश्चात उदय, पश्चात यानी चौथे में, क्योंकि कोई जीव मरकर सम्यक्तों के साथ तिर्यंचों में उत्पन्न होता है भोगभूमि में, तो वहां तिर्य गत्यानुपूर्वी का उदय पाया जाएगा, क्योंकि सासादन गुणस्थान में बंध के नष्ट हो जाने पर तत्पश्चात असंयत समय दृष्टि गुणस्थान में उदय का विच्छेद होता है। ये समझ में आई बात, क्योंकि हमने चौथे, हाँ चौथे गुणस्थान में हमने देखा था ना, सभी अनुपूर्वी यहीं पर ले लेना। हाँ उदय की अपेक्षा लेना है, क्योंकि उदय और बंध की ही चर्चा चल रही, कंपैरिजन उसी की चल रही, किसका, अनुपूर्वी का नहीं। देखो अनुपूर्वी कब होगी, विग्रह गति में, विग्रह गति में किसी को पांचवा गुणस्थान नहीं होता, इस तरह सोचना। अनंतानुबंधी चतुष्क का बंध और उदय दोनों साथ में विच्छिन्न होते हैं, ये दूसरे गुणस्थान में, क्योंकि सासादन समय दृष्टि के चरम समय में दोनों का विच्छेद देखा जाता है, विच्छेद हुआ, विच्छेद करो, यानी यहाँ दूसरे में उसका बंध भी है हृदय भी है, तीसरे में नहीं है, इसलिए उसको चरम समय कहते हैं। मनुष्यायु कौमा, मनुष्य गति और मनुष्य गति प्राज्ञानुपूर्वी का तिर्य गति में उदय ही नहीं है, ये बंधने वाली जो बंध विच्छित्ति होती है उसके उदय संबंधी चर्चा है, यहाँ तो उसके उदय का सवाल नहीं है, क्योंकि वहाँ उनके उदय का विरोध है। इसी कारण इनके बंधर उदय पूर्व या पश्चात विच्छेद होने का विचार नहीं है। दुर्भग और अनादेय का, पूर्व में बंध विच्छिन्न होता है पश्चात उदय, क्योंकि चौथे गुणस्थान में उदय नष्ट होने वाली प्रकृतियां हैं, क्योंकि सासादन गुणस्थान में न रह गया, इनके बंध के नष्ट हो जाने पर असंयत समय दृष्टि में उदय का विच्छेद देखा जाता है। ये पूछी हुई प्रकृतियों में से प्रकृतियां देखनी है, अन्य प्रकृतियों की बात यहां नहीं सोचनी है। अब नीचे का पैराग्राफ पेज नंबर 120 पर बात चल रही है अपनी। स्त्यान वृद्धियां आदि तीन, अभी सोदय में बनती है कि परोदय में ये पूछ रहे हैं। स्त्यान वृद्धि तीन के बारे में क्या कहेंगे, सोदय में बंधेगी कि परोदय में? हाँ, क्योंकि नींद में भी अपने अपने उदय में भी बंधेगी, क्योंकि वो तो ध्रुव बंधी है, और जागृत अवस्था में भी बंधेगी। तो स्त्यान वृद्धि आदि तीन, अनंतानुबंधी चतुष्क, उसमें क्रोध का जो बंध है वो मान माया लोभ में भी होता है, इस तरह से लेना सोदय परोदय। स्त्रीवेद, यानी स्त्रीवेद के उदय में भी स्त्रीवेद बंध सकता है, पुरुष वेदों के उदय में भी इसको बंद कर सकते हैं। चार संस्थान पांच सहनन, पूछे हुए में से पूछना बताना, इसलिए चार संस्थान पांच सहनन लिए। इन ग्रुप में से हमको देखना है, किसी भी संस्थान के उदय में कोई भी अन्य संस्थान बन सकता है। उद्योत, जिन तिरंजों को उद्योत का उदय है वो उद्योत को बांध भी सकते हैं, जिसको नहीं है वो भी बांध सकते हैं। अप्रशस्त विहाय गति, दुर्भग दुस्वर और अनादेय, इनका स्वोदय परोदय से बंध होता है, किंतु विशेष इतना है कि तिर्यंच योनिमतियों में स्त्रीवेद का स्वोदय से ही बंध होता है, क्योंकि वो तो उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया वो स्त्रीवेद वाले तिर्यंच है, यानी उनका उसी का उदय रहता है। तिर्यगायु तिर्यगति और नीच गोत्र का स्वोदय से ही बंध होता है, क्योंकि तिर्यंचों की बात चल रही है यहाँ पर। मनुष्यायु मनुष्य गति और मनुष्य गति प्राज्ञानुपूर्वी का परोदय से बंध होता है, क्योंकि उदय यहाँ तीर्य गति आदि का चल रहा है और बंध हो रहा है मनुष्य गति आदि का। औदारिक शरीर और औदारिक शरीर अंगोपांग का स्वोदय परोदय से बंध होता है, क्योंकि विग्रह गति में इनका उदय नहीं रहता। आप कहेंगे औदारिक शरीर तो हमेशा रहेगा ना, पर वो औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय में, वहाँ शरीर नाम कर्म का उदय कब होता है, वहाँ पहुँचने पर, संस्थान नाम कर्म शरीर नाम कर्म, तो विग्रह गति में तो इसका बंध चल ही रहा है ना, क्योंकि वहाँ तो गति बंध ही रही है। विग्रह गति में भी कोई गति बंधेगी मनुष्य तिरंज गति, तो उसके साथ औदारिक शरीर अंगोपांग का बंध होगा, पर तब उसका उदय नहीं है, इसलिए परोदय कहेंगे, उदय नहीं तो परोदय कहेंगे, क्योंकि विग्रह गति में इनका उदय नहीं है। तिर्य गति प्राज्ञानुपूर्वी का भी स्वोदय परोदय से बंध होता है, क्योंकि विग्रह गति छोड़कर अन्यत्र उसके उदय का अभाव है। बाकी प्रकृतियों का विग्रह गति में अभाव था उदय का, और यहाँ तो उसके केवल विग्रह गति में उसका उदय पाया जाता है, अन्यत्र नहीं। अब स्त्यान वृद्धि सांतर निरंतर की बात करेंगे। स्त्यान वृद्धि त्रय और अनंतानुबंधी चतुष्क का निरंतर बंध होता है, क्योंकि ये ध्रुवबंधी है, पहले दो गुण स्थान में वो लगातार इनका बंध चल ही रहा है। स्त्रीवेद, मनुष्य गति, चार संस्थान, पांच सहनन, अब देखो ये उलट पुलट कर बंधने वाली प्रकृतियां हैं। मनुष्य गति प्राज्ञान पूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त रह गया, अप्रशस्त विहाय गति, दुर्भग दुसर अनादेय, इनका सांतर बंध होता है, क्योंकि एक समय में इनके बंध का विश्राम देखा जाता है, यानी इसमें से उद्योत ऐसी कि एक समय बंदी और नहीं भी बंदी, और बाकी कैसे है, एक समय में उसका बंध रुक कर वो प्रतिपक्ष का बंध भी शुरू हो जाता है। तिर्यगायु मनुष्यायु का निरंतर बंध होता है, क्योंकि जघन्य से भी इनका एक समय बंध नहीं पाया जाता, इसलिए उसको निरंतर कहते हैं। जघन्य एक समय जिसके पाया जाएगा उसको सांतर में ले लेते हैं। तिर्यक गति, औदारिक द्विक, तिर्य गति प्राज्ञानुपूर्वी और नीच गोत्र, इनका सांतर निरंतर बंध होता है, क्योंकि देखो शांत निरंतर बंद क्यों होता है, ये तो अग्नि का एक वायु का एक में ही तो तीर्य गति ही बनती रहती है, उसमें मनुष्य गति का ऑप्शन नहीं होता, यानी लगातार इसी का बंद होता रहता है, तो उसके साथ औदारिक बंधेंगे, इनका शांत निरंतर बंद है, क्योंकि तेज कायिक और वायु कायिकों में तथा तेजस कायिक वायु कायिक व सप्तम पृथ्वी के नारकियों में से आकर पंचेंद्रिय तीर्यंच और उसके पर्याप्त वो योनिनियों में उत्पन्न हुए जीवों के और सनत कुमार आदि देव व नारकियों में से आकर तीर्यंचों में उत्पन्न हुए जीवों के इनका निरंतर बंध देखा जाता है। क्या कहते हैं, तेजस का एक वायुकों को अलग लेना और सातवें नरक से आए हुए जीवों की बात अलग सोचना और सनत कुमार आदि देव वो भी बात अलग लेना, यानी वो पंचेंद्रिय को ही बांधेंगे कुछ काल तक, इसलिए उसको निरंतर लिया। फिर से देखो, फिर पढ़ते ये पूरा तीर्य गति औदारिक द्विक का अर्थ क्या है, शरीर अंगों पर हाँ, तीर्य गति प्रायगेनपुरी और निज गोत्र, इनका सांतर निरंतर बंद होता है, अन्य उदय है वहां पर बंद है, यहाँ कंटिन्यूस कर रहा है, गति बनती है तो गत्यानुपूर्वी बनती ही रहती है बंद में, उदय केवल उसका विग्रह गति में है, उदय का और बंद का थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अब अग्नि का एक वायु का एक क्यों सांतर निरंतर बंध की बात है, उदय की नहीं, सांतर इसलिए है कि उसके मनुष्य गति का प्रतिपक्ष वो बनता रहता है, इसलिए उसको सांतर कहेंगे। निरंतर क्यों, कुछ जीव इसको ही बांधते हैं, कौन से अग्नि का एक वायु का एक, वो तो लगातार इसी को बांधते रहेंगे जब तक वो उस पर्याय में है, उनके कोई प्रतिपक्ष नहीं होते, मनुष्य गति को वो बांध नहीं सकते हैं, इसलिए क्या कहा देखो, तेजस का एक वर वायु का एक उनके क्या पाया जाता है, निरंतर बंध देखा जाता है, तथा तेजस का एक वायु का एक व सप्तम पृथ्वी के नारकियों में से आकर, वो सप्तम पृथ्वी का नारकी कहाँ उत्पन्न हो सकता है, पंचेंद्रिय तीर्यंश उसके पर्याप्त और योनियों में उत्पन्न हुए जीवों के, वो अलग लेना है, यानी वो जो पंचेंद्रिय तीर्यंशों में आए हैं वो तो पहले वहां पंचेंद्रिय का ही बंद करेंगे, ऐसा उसका अर्थ होगा, हाँ यानी अंगोपंग का ही बंद करेंगे, तीर्यंश गति को ही बांधेंगे वहां पर, और सनत कुमार आदि देव व नारकियों में से आकर तीर्यंशों में उत्पन्न हुए जीवों के इनका निरंतर बंध देखा जाता है। ये कुछ विशेष बात है ना, निरंतर बंध है ना, अंतर्मूर्त है ना, एक समय में वो रुकेगा नहीं, ये कहना चाहते हैं, यानी वो हमेशा वो ही बांधते रहेगा ऐसा नहीं है, एक समय में वो बंध नहीं रुकने वाला, ये कहना चाहते हैं, पहले अंतर्मूर्त, एक अंतर्मूर्त तक वो एक इंद्रिय का बंध नहीं करेंगे, उसका अर्थ है, सनत कुमार जिस पंचेंद्रिय तीर्यंश में आए हैं, पंचेंद्रिय में ही जाएंगे ना, हाँ उसकी बात है, तो वो पहले अंतर्मूर्त तक पंचेंद्रिय जाति का बंद करेंगे, वहां से आया तीर्यंश में जन्म लिया उसकी बात है, निरंतर में यानी वो एक समय में रुकेगा नहीं, बस इतना ही लेना है। हुआ और उसने पंचेंद्रिय जाति बांधी, बाद में अंतर्मूर्तक, बाद में वो तो एक इंद्रिय द्विंद्रिय सब बांधेगा, वो कायम के लिए नहीं है, पूरे भव के लिए की बात नहीं है। हाँ देखो देखो, सौदर में ईशान तक के जीव एकेंद्री जाति भी बांधते, पंचेंद्री जाति भी बांधते हैं। अगर वो तीन इंच में आते हैं तो वो भी एकेंद्री पंचेंद्री जाति का बंद करेंगे अल्टरनेटली, पहले अंतर्मूर्त में बंद, इन्हें एक समय में भी उसका प्रतिपक्ष हो सकता है। सनत कुमार आदि से आए हुए, क्योंकि वहाँ भी पंचेंद्री जाति का ही बंद कर रहे थे, और यहाँ पर भी अंतर्मूर्त तक पंचेंद्री जाति को ही बांधेंगे, यानी अंतर्मूर्त तक वो एक समय में रुकेगी नहीं, इसलिए उसको लेना। आदि कुछ भी ऊपर के, जहाँ तक के 12वें तक के आते हैं, और किसी भी नरक से आए हुए, वहाँ कोई कंडीशन नहीं कि 7वें से आए हुए की। यहाँ क्या देखते हैं, देखो 7वीं से तो वहीं पर आते हैं, सप्तम पृथ्वी के नारकियों में से आकर पंचेंद्रिय तीन इंच और उसके पर्याप्त योनियों में उत्पन्न हुए जीवों के, ये दूसरी बात बताई। तीसरी बात, सनत कुमार आदि देव व नारकी नारकी ने नारकी इन जनरल से आकर तिरियंचों में उत्पन्न हुए जीवों के इनका निरंतर बंध देखा जाता है, यानी अंतर्मुख तक पंचेंद्रिय जाति बांधेंगे। यानी तिरियंच गति बांधेंगे, ऐसा भी उसका अर्थ हुआ, तिरियंच गति को भी लिया उसमें, पंचेंद्रिय जाति और तिरियंच गति। हाँ वो पंचेंद्रिय तिरियंच का ही बंद, क्योंकि वहां से तिरियंच में आए हैं, वो पहले समय में तिरियंच का ही बंद कर रहे, पहला अंतर्मूर्त तक। विशेषता यह है कि सासादन गुणस्थान में सांतर ही बंद होता है, क्योंकि वह गुणस्थान तेजस का एक, वो वायु का एक जो में नहीं होता, तथा सप्तम पृथ्वी से इस गुणस्थान के साथ निर्गमन भी नहीं होता, यानी सासादन में वो निकलेंगे भी नहीं वहां से। और बाकी जो सासादन वाले जो तिर्यंच है पर्याप्त अवस्था में, वो तो तिर्यंच है तो दूसरे गुणस्थान में तो तीनों ही गति बांध सकते हैं। औदारिक द्विक का सांतर निरंतर बंद होता है, कहाँ की बात है, सांसादन में। इसका अर्थ क्या, औदारिक द्विक का सांतर निरंतर बंद का अर्थ क्या होता है, देखो दूसरे गुणस्थान की बात चल रही है, दूसरे गुणस्थान में सांतर क्यों कहा, वैकिरिक शरीर अंगोपांग भी बांध सकता है, यानी देवगति भी बांध सकते हैं, निरंतर क्यों कहा, तिरंज गति बांधेगा तो औदारिक शरीर तो बांधेगा ही ना, पर वहां तो देवगति भी बनती है। भोग भूमि के तिर्यंचों में सासादन वाला भी देवगति को ही बांधेगा ना, नहीं उसका नहीं नहीं नहीं, नहीं। देव के लिए वो निरंतर होगा, औदारिक द्विक के लिए निरंतर लेना है ना, सासादन में औदारिक द्विक तिर्यंच की चले, सॉरी अन्य की नहीं सोचना है। बोलो बोलो, सासादन में निरंतर क्यों कहा, औदारिक को भी बांधने वाला, सांतर तो देवगति का बंध है तो वैकृत शरीर अंगोपांग बांधेंगे, निरंतर में किसको लेना, वो बांधता ही नहीं है इसको। देवगति को हम उसको निरंतर कहेंगे। भोग भूमिका किसी भी गुणस्थान वाला हो पर्याप्त जी। हाँ, वो बांधेगा ही नहीं उसको, वो देवगति को ही बांधता रहेगा। यहाँ औदारिक शरीर निरंतर बांधना चाहिए। हाँ, देखो यहाँ क्या लिया उन्होंने, फिर से पढ़ते दीर्घ गति द्विक, नीचे से एक दो तीन चार पांच छह सातवीं लाइन। दीर्घ गति औदारिक द्विक यानी शरीर अंगोपांग, तीर्य गत्यानुपूर्वी और नीच गोत्र, इनका सांतर निरंतर होता है। निरंतर किस में होता है, तेजस का एक वायु का एक में होता है, अन्यों में सांतर होता है। या सप्तम पृथ्वी के नारकी से आकर पंचेंद्रिय तीर्यंच और उसमें पर्याप्तों में योनियों में उत्पन्न हुए उनको भी निरंतर होता है, क्योंकि अंतर्मूर तक वो तीर्यंच गति और पंचेंद्रिय जाति बांधेंगे। इसलिए वही बात सनत कुमार देव और नारकियों में से आकर तीर्यंच में उत्पन्न हुए जीवों की बात है। विशेषता क्या बता रहे, सासादन गुणस्थान में सांतर ही बंध होता है, क्योंकि वहां तेजस का एक वो होते नहीं है। तथा सप्तम पृथ्वी से इस गुणस्थान के साथ निर्गमन भी नहीं होता, ये बताया नहीं उन्होंने। परंतु औदारिक द्विक का शांत निरंतर बंद होता है। ऊपर औदारिक द्विक लिए और यहां फिर औदारिक द्विक को अलग ले रहे। बनता है ना, विशेषता किसमें बताई, सासादन में सांतर होता है क्योंकि तेजस का एक वायु का एक नहीं और सप्तम पृथ्वी वाले नहीं, ये बताया उन्होंने। परंतु औदारिक द्विक का शांत निरंतर बंद होता है। यानी वो सनत कुमार में से आए हुए ले ना, इन्हें ऐसा लेना है देखो, सासादन में जो अपर्याप्त अवस्था में है, सासादन के साथ तो तीर्यंच में आया हुआ जीव जो है पंचेंद्रिय में ही आएगा और वो देवगति का बंध नहीं कर सकता। पर्याप्त सासादन वाले देवगति का वगैरह बंध करेंगे, उनके लिए सांतर है, और अपर्याप्तों में वो निरंतर है औदारिक शरीर अंगोपांग का। फिर मैं जरा देखती, देखो केवल औदारिक द्वीप को अलग से लिया उन्होंने। ऊपर तो बाकी वहां उत्पन्न होने वाले जीवों की बात की, सासादन गुणस्थान में सांतर ही लिया। हाँ आएगा ना, तो औदारिक द्विक का ही। हाँ तो वहाँ तिरंज गति क्यों छोड़ी फिर? आगे बढ़ते देखो, पेज नंबर 122। यानी सासाधन में फिर रेगुलर पर्याप्त होगा सासाधन वाला, तो देवगति को भी बांधेगा। हाँ परंतु सासाधन वाला अपर्याप्त अवस्था में इसी को बांधेगा। 122 पेज पर आते हैं। हाँ क्या क्या क्यों हाँ सासाधन में अपर्याप्त अवस्था में। हाँ तीर्यंचों की बात चल रही है। तो सांतर क्यों कहा? देवगति भी तो बांधेगा ना, सासाधन में पर्याप्त में देवगति बांधेगा, अपर्याप्त में तीर्यंच गति बांधेगा। तीर्यंच या मनुष्य गति, यानी केवल अपर्याप्तों की बात करेंगे तो नहीं, वो तो पर्याप्त, क्योंकि सांतर को भी घटित करना है ना। ऊपर क्या है? ओरालिय दुगस्स सांतर निरंतर। तिर्यंचों में औदारिक सासाधन में औदारिक द्विक का सांतर निरंतर बंधन है। देखते हैं उसको कल। अब यहाँ आते हैं 122 पर, पेज नंबर 122। इन प्रकृतियों के प्रत्यय सब गुणस्थानों में पंचस्थानिक प्रकृतियों के समान है। पंचस्थानिक यानी पांच गुणस्थान वाले, क्योंकि इनमें पांच गुणस्थान है ना। विशेषता केवल यह है कि यानी जो पांच गुणस्थानों के प्रत्येक के प्रत्यय है, वैसा ही ये जो प्रकृतियां जो दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छेद होती है उनके लिए पहला दूसरा गुणस्थान है वही होगा जो तिर्यंचों में पहले गुणस्थानों में हमने गिना था। विशेषता है वो बताएंगे। विशेषता केवल यह है कि तिर्यगायु और मनुष्यायु का मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में कार्मण प्रत्यय नहीं होता। कार्मण प्रत्यय औदारिक मिश्र हो सकता है, क्योंकि तिर्यंच है तो लब्धि पर्याप्त सामान्य तिर्यंच, तो उसको हाँ औदारिक मिश्र में बांधेंगे, पर्याप्तों में उसको भी नहीं लेंगे। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनियों में औदारिक मिश्र और कार्मण प्रत्यय नहीं होते। इसका अर्थ समझ में आता है? जब सामान्य पंचेंद्रिय चिरियंश कहा तो उसमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों होते हैं, वो तो आयु बांधेंगे वहां पर, पर जो पर्याप्त जीव है वो अपर्याप्त अवस्था में यानी औदारिक मिश्र में आयु को नहीं बांधते, इसलिए उनके वो प्रत्यय आयु के लिए वो प्रत्यय नहीं गिनेंगे। चार प्रकार के तिर्यंचों में सासाधन गुणस्थान में चार प्रकार के ने तिर्यंच और पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक औदारिक मिश्र व कार्मण प्रत्यय नहीं होते, क्योंकि अपर्याप्त काल में उसके आयु का बंध नहीं होता। देखो चार प्रकार के तिर्यंचों में सासाधन गुणस्थान में औदारिक मिश्र और कार्मण प्रत्यय नहीं होते, किसके लिए? तिर्यगायु और मनुष्यायु के लिए। इसका अर्थ यह है कि सासादन गुणस्थान के साथ मरकर तीर्यंचो में जो उत्पन्न हो रहा है वो कौन सा जीव है? वो पर्याप्त नाम कर्म वाला है, वो अपर्याप्त अवस्था में आयु को बंधन नहीं करेगा। ये तीर्यक आयु और मनुष्य आयु के लिए ये सारे अप्लीकेबल है, अन्य प्रकृतियों की बात नहीं हो रही। हाँ, अभी आगे पढ़ते हैं। स्त्यान वृद्धि त्रय और अनंतानुबंधी चतुष्क के मिथ्या दृष्टि चारों गतियों से संयुक्त और सासादन समय दृष्टि तीन गतियों से संयुक्त बंधक है। ये तो समझना आसान, क्योंकि ये तो चारों गतियों के साथ ये बनती है, क्योंकि ध्रुव बंधी है। स्त्री वेद को नरक गति के बिना तीन गतियों से संयुक्त, मनुष्याय और मनुष्य गति परायण पूर्वी को मनुष्य गति से संयुक्त, हाँ पेज नंबर 122 नीचे का पैराग्राफ। ये जिस गति को उस गति के साथ बांधते हो तो आसान है ना, आयु और अनुपूर्वी उस गति के साथ बंधेगी। तीर्यक आयु तीर्य गति प्राज्ञान पूर्वी और उद्योत को तीर्यंच गति से संयुक्त। अब औदारिक शरीर किसके साथ बंधेगा? मनुष्य तीर्यंच दोनों गतियों के साथ बंधेगा, है ना। औदारिक शरीर चार संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग री रह गया, शरांगोपांग हुआ ना, शरीर अंगोपांग और पांच सहनन को तीर्य गति और मनुष्य गति से संयुक्त बांधता है, तथा अप्रशस्त विहाय गति दुर्भग दुस्वर अनादेय और नीच गोत्र को देव गति के बिना तीन गतियों से संयुक्त बांधते हैं। मिथ्या दृष्टि की बात है, मिथ्या दृष्टि चारों गतियां बांध सकता है, परंतु देव गति के साथ ये प्रकृतियां नहीं बनती है। इन प्रकृतियों के बंधक तीर्यंच स्वामी है, क्योंकि हमारी मार्गणा की प्ररूपना चल रही है। बंध अध्वान और बंध विनष्ट स्थान सुगम है, क्योंकि अभी हमने दूसरे गुणस्थान वाली बंध विच्छित्ति वाली प्रकृतियां देखी थी। स्त्यान वृद्धि त्रय और अनंतानुबंधी चतुष्क का मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में चारों प्रकार का बंध होता है, क्योंकि ये ध्रुवबंधी है, इसलिए सादि अनादि ध्रुव अध्रुव चारों का होगा। सासादन गुणस्थान में दो प्रकार का बंध होता है, क्योंकि वहाँ अनादि और ध्रुव बंध का अभाव है, यानी वो सब प्रकृतियाँ सादि और अध्रुव कहेंगे। शेष प्रकृतियों का बंध, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छित्ति होती है ना, तो ऊपर के गुणस्थानों में जाके आए हुए जीव है ये दूसरे गुणस्थान वाले, तो सादि होगा अध्रुव। शेष प्रकृतियों का बंध सादि व अध्रुव होता है, क्योंकि वे अध्रुव बंधी है, यानी जो प्रतिपक्ष वाली वगैरह जो गिनी थी हमने, या उद्योग जो है अध्रुव बंदी है, तो उसका सादी और अध्रुव होगा। अब पहले गुणस्थान की बंदे विच्छित्ति बताएंगे यहाँ पर। मिच्छत्त नौसय वेद निरयाऊ निरय गई एइंद्रिय बेइंद्रिय तीइंद्रिय चौरिंद्रिय जादि हुंड संठान असंपत्त सेवट्ठ संगठन निरे गई पाउगण पूवी आदाव थावर सोम अपज्जत सहारण शरीर नामानम को बंधो को अबंधो। ये लास्ट वाला को नहीं चाहिए, को बंधो को अबंध हो गए ना, अंतिम को निकाल देना। मिथ्यात्व नपुसक वेद नारकायु कौमा नरक गति एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेन्द्रिय जाति हुंड संस्थान असंप्राप्त सुपाटिका सहनन नरक गति प्राज्ञान पूर्वी आतप स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण शरीर नाम कर्मों का कौन बंधक और कौन अबंधक है, यह सूत्र सुगम है। क्योंकि तो रेगुलर जो हमने गिनी थे ना 16 प्रकृतियां, वो सब लेना है यहाँ पर, कहते मिच्छा इट्ठी बंधा एदे बंधा अवशेषा बंधा, मिथ्या दृष्टि बंधक है, ये बंधक है, शेष तिर्यंच बंधक है। तिर्यंचों में ही बात चल रही अपनी, इसका अर्थ कहते हैं। अर्थ में वो उदय के बंध पहले उच्छिन्न होता है उसकी बात करेंगे। मिथ्यात्व, एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेंद्रिय यानी ये जाति सब, आतप स्थावर सूक्ष्म पर्याप्त और साधारण, हाँ एट ए टाइम, इनका बंध और उदय दोनों साथ विच्छिन्न होते हैं, क्योंकि मिथ्यादृष्टि गुणस्थान को छोड़कर उपरिम गुणस्थानों में इन प्रकृतियों के उदय का अभाव है। बंध विच्छित तो यहाँ बता ही दी है, और उदय भी ऊपर नहीं होता है। नपुसक वेद करो देव हुआ, मिला क्या ब्रह्मा? हाँ, हमने पहले करेक्शन किया हुआ है, आप लोग रहते हैं। नपुसक वेद, कुंड संस्थान और असंप्राप्त सुपाटिका सहनन, इनके बंध का ही विच्छेद है, उदय का नहीं, क्योंकि सब गुणस्थानों में इनका उदय देखा जाता है। ये तीर्यंचों की बात हो रही है, तीर्यंचों के पांच गुणस्थान होते हैं, तो पांचों गुणस्थान तक इसका उदय तो पाया ही जाता है ना? नारकायु, नरगति और नरगति प्राज्ञानुपूर्वी काम, तिर्यंच गति में उदय न होने से इनके पूर्व या पश्चात बंधोदय विच्छेद होने का विचार नहीं है। एक तो सभी उदय पाया ही जाता है, विच्छिन्न ही नहीं होता है, उसके साथ भी कंपेयर नहीं हो सकती, और जिनका उदय ही यहाँ नहीं है उसके साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते। अब आते हैं 124 पृष्ठ पर, ये स्वोदय से बनती है कि परोदय से, उसकी बात करेंगे। मिथ्यात्व का स्वोदय से ही नारकायु नरगति और नरगति प्राज्ञानुपूर्वी का परोदय से ही, यानी क्या, यहाँ तीर्यंचों की बात है, तीर्यंच गति तीर्यंचायु आदि का उदय चल रहा है और बांध रहा है नरक गति वगैरह, वो परोदय से बन रही है, तथा शेष प्रकृतियों का स्वोदय परोदय से ही बंध होता ही लगाया। विशेषता यह है कि पंचेंद्रियादिक, ये समझ में, बाकी प्रकृतियां स्वोदय परोदय, बाकी प्रकृतियों में कौन सी है, एक इंद्रियादि जाति है, संस्थान एक है, एक सहनन है, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त है, वही वो कह रहे हैं कि वो स्वोदय में बंध है कि परोदय में, दोनों ही होंगे। इन पंचेंद्रिय जाति वाला भी उसको बांध सकता है, एकेंद्रीय जाति भी उस कुछ भी बांध सकता है, कोई भी सहनन कोई भी संस्थान इस तरह से। विशेषता यह है कि पंचेंद्रियादिक तीन प्रकार के तीर्यंचों में, देखो जब सामान्य तीर्यंच कहा तो सामान्य में एकेंद्रीय भी आए, तो एकेंद्रीय जीव भी एकेंद्रीय जाति का बंध करते तो स्वोदय से होगा, और एकेंद्रीय जीव अन्य जाति का बंध करते तो परोदय से होगा। अब जो पंचेंद्रिय तिर्यंच कह दिया तो उनके लिए, उन तिर्यंचों में एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेंद्रिय जाति, आताप स्थावर सूक्ष्म और साधारण प्रकृतियों का भी परोदय से बंध होता है, क्योंकि उनका उदय पंचेंद्रियों के नहीं पाया जाता, इसलिए वो प्रकृतियां बनती है तो हम कहेंगे परोदय से बंध हो रहा है। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और योनिनियों में अपर्याप्त का परोदय से बंध होता है, यानी वो पर्याप्त जीव है तो वो पर्याप्त जीव अपर्याप्त नाम कर्म बांध रहे हैं, यानी पर्याप्त नाम कर्म का उदय होते हुए अपर्याप्त बंधा जाता है, तो उनके लिए अपर्याप्त नाम कर्म का परोदय से बंध कहलाएगा। योनिनियों में नपुसक वेद का परोदय से बंध होता है, यानी ये उदय स्त्री वेद का है, हाँ, और नपुसक वेद का बंध हो रहा है, तो ब्रह्मा यहाँ पुरुष वेद को क्यों नहीं लिया? यहाँ जो लिस्ट है उसमें से हमको देखना है, पुरुष वेद को भी बता चुके पहले, जो बनती है पांचों गुणस्थान तक उनमें से वो बताया था, उसका बंध तो परोदय से हो रहा है, पुरुष वेद नपुसक वेद दोनों को लिया था। मिथ्यात्व और नारकायु का निरंतर बंध होता है, क्योंकि मिथ्यात्व है तो ध्रुवबंदी है तो निरंतर है ही उसका। नारकायु भी अंतर्मूर तक तो बनती है, एक समय में नहीं रुकती है, क्योंकि एक समय में इनके बंध का विश्राम नहीं होता। शेष प्रकृतियों का बंध शांतर होता है, क्योंकि एक समय से इनके बंध का विश्राम देखा जाता है। अब प्रत्यय गिनेंगे। मिथ्यात्व, नपुसक वेद, पुंड संस्थान, असंप्राप्त सुपाटिका सहनन, नरगति नरगति प्राज्ञान पूर्वी, एकेन्द्रिय द्विन्द्रिय तीन्द्रिय चतुरेन्द्रिय, आतप स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण, इनके 53 प्रत्यय होते हैं। आयु को छोड़ा इसमें से, है ना? योनिमतियों में 51 प्रत्यय होते हैं, इन्हें पुरुष वेद और नपुसक वेद को माइनस किया। देखो इनके 53 प्रत्यय होते हैं। हमेशा हम कितने गिनते हैं? 55 गिनते हैं ना, तो 55 में क्या नहीं होगा? ये तिर्यंच है, वैकरिक वैकरिक मिश्रण नहीं होगा। योनियों में तुम 51, क्योंकि दो वेद भी निकाले। नारकायु के अभी ऊपर 15 प्रकृति अलग ली थी, यहाँ नारकायु अलग ले रहे। नारकायु के तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच और पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तों में 51 प्रत्यय होते हैं। 51 इसलिए 53 में से क्या कम कर दिया? कारमान का योग और औदारिक मिश्र में नहीं बंधेगा। और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमतियों में 49 प्रत्यय होते हैं। देखो योनिमतियों में 51, यानी दो वेद माइनस किए। अब ये ऊपर के प्रकृतियों की बात है, अब अकेले नारकियों की बात सोचनी है। तो नारकायु का बंध कौन करेंगे? तिर्यंचों में सामान्य तिर्यंच, सामान्य तिर्यंचों में भी पंचेंद्रियों को ही लेना है। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तों में, यहाँ योनिमति को छोड़ा है, वहाँ 51 प्रत्यय होते हैं। ऊपर 53 गिने थे, उसमें से दो नहीं है। 53 में से कौन से दो नहीं है? औदारिक मिश्र और कारमान। समझ में आई बात? वहां आयु का, किसी आयु का बंध नहीं होता, इसलिए उसको छोड़ा। पर अन्य प्रकृतियां अपर्याप्त अवस्था में भी बनती है। हाँ, तो नारकायु जो है, अन्य प्रकृति 15 प्रकृतियों के बारे में रखा उसको, औदारिक मिश्र कारमान को, पर जब नारकायु बांधने का सवाल था, वो अपर्याप्तों को नहीं बनती है, इसलिए वहां 51 प्रत्यय बताए। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमतियों में, उसमें से और दो वेद कम कर देना, 51 में से और दो कम कर दिए, यानी 51 माइनस दो, दो वेद, तो 49 हो गए। ख्याल में आई बात? अब कौन से गति से साथ बन रहे हैं? मिथ्या दृष्टि तिर्यंच मिथ्यात्व को चारों गतियों से संयुक्त, नपुसक वेद व हुंड संस्थान को तीन गतियों से संयुक्त, क्योंकि देवगति के साथ इनका बंध नहीं है, नारकायु नरगति और नरगत्यानुपूर्वी को नरक गति से संयुक्त, एकेंद्रिय द्विन्द्रिय तीन्द्रिय चतुरेन्द्रिय, आतप स्थावर सूक्ष्म और साधारण, इनको तिर्यक गति के से संयुक्त, क्योंकि ये तिर्यंचों में ही पाए जाते हैं, तथा असंप्राप्त सुपाटिका सहनन और अपर्याप्त को तिर्य गति व मनुष्य गति से संयुक्त बांधते हैं। अभी बांधने वाले तो तिर्यंच स्वयं है, इन प्रकृतियों के बंध के तिर्यंच स्वामी है। बंध अध्वान और बंध विनष्ट स्थान सुगम है। मिथ्यात्व का सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव चारों प्रकार का बंध होता है और शेष प्रकृतियों का सादी व अध्रुव बंध होता है क्योंकि ये अध्रुव बंधी है। अब यही रुकेंगे हम क्योंकि अप्रत्यक्ष अनावरण वाली बात चौथे गुणस्थान की बताएंगे। हाँ हाँ वो रह गया वो 84 लाख उत्तर भेदों की बात कल अभी पढ़ेंगे। हाँ अश्विन भयानी की बात पढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो लो। मैं भाई